स्नेह, सहानुभूति, सहनशीलता मनुष्य में बढ़ी होती, लेकिन ये दिव्य गुण घटते गए या बढ़ते गए? ये तो और ही घटते गए। तो ये सारी दुनिया का पतन होता है द्वापर से, जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं और दूसरे दूसरे धर्म स्थापन करते हैं। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य कहा तो जाता है ना, सतयुग त्रेता है, ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, और द्वापर कलयुग है, असुरों के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य। भारत की ही बात है, रावण को भारत में ही जलाते हैं, दूसरे देशों में रावण को नहीं जलाते। क्यों? क्या भारत में रावण विदेश से आता है क्या? ये रावण कहां का वासी है और राम कहां का वासी है? कहते राम अयोध्या का वासी है, आ माने नहीं, योद्धा माने युद्ध, जहां नहीं होता। तो सतयुग त्रेता में कोई युद्ध नहीं होता था, जहां राम का राज्य था। जब द्वापर शुरू होता है, दुख शुरू होता है, तो भी रावण को नहीं जलाते, क्योंकि द्वापर में फिर भी आठ कलाएं रहती है। लेकिन कलयुग कला ही हो जाता है, कोई गुण मनुष्य में नहीं रहते, सब अवगुणी हो जाते हैं। तब रावण को जलाना शुरू करते हैं। दुनिया में भी देखा जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पुतले जलाते हैं। कब जलाते हैं? जब कोई ज्यादा दुखी करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो भारत में रावण का पुतला जलाते चले आते हैं कलयुग से। बाबा ने समझाया है, और अब धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बैठ प्रार्थना करने से वो कुछ भी नहीं देंगे। क्राइस्ट की उपासना करो, ब्रह्मा की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, शंकर की पूजा करो, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो तो 2500 वर्ष से करते ही चले आए, विष्णु की मूर्तियां बनाई उनकी पूजा करते रहे, शंकर की मूर्तियां बनाई उनकी पूजा करते रहे, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिली। सुख शांति मिलती ही तब है जब वो निराकार ज्योति सदाशिव इस सृष्टि पर आता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा अपना कार्य शुरू करता है। तो उनको सन्मुख आना पड़ता है, मुख के सामने आना पड़े, हाजरा हुजूर होना पड़े, प्रेजेंट होना पड़े। कृष्ण में परमात्मा आते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं मानते। ये कहते हैं कृष्ण भगवान था और वो अर्जुन के रथ में आया था, तो समझ लेते हैं कि वो कोई स्थूल रथ हुआ होगा। वास्तव में शरीर को ही रथ कहा जाता है। इस शरीर में इंद्रियों रूपी घोड़े हैं, इन इंद्रियों को मनुष्य कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है। जब इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कोई के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो सुप्रीम सोल शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है और इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाता है राजयोग के द्वारा। ऐसा ज्ञान देता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूं। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग में आता है, नरसिंह का अवतार लेता है, हिरण्यकश्यप को मारता है, त्रेता में राम बन के आता है, रावण को मारता है, द्वापर में कृष्ण भगवान बन के आता है और कौरवों का यादवों का संहार करता है। अरे कृष्ण भगवान बन करके द्वापर में आए और द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराने के बाद रिजल्ट निकले कलयुग की स्थापना, तो भगवान का पापी कलयुग की स्थापना करने आता है क्या? भगवान पाप की स्थापना करने आएगा? नहीं। ये सब बातें मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। बाप आकर के बताते हैं मैं तो आता ही तब हूं जब ये सृष्टि पूरी पतित हो जाती। दुनिया में भी कोई बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए मकान तभी बनाते हैं जब पुराना मकान बहुत पुराना हो जाता है। जब तक रिपेयरिंग से काम चल सकता है तब तक उसमें रिपेयरिंग करते रहते हैं। फिर जब रिपेयरिंग से काम नहीं चलता है, तब पुराना मकान तोड़वा करके नया मकान बच्चों के लिए बनाते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है। ये सृष्टि रूपी मकान जब पुराना होना शुरू होता है द्वापर से, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आकर के समय समय पर स्थान स्थान पर इसकी रिपेयरिंग का काम कराते हैं। अरब देश में इस्लाम धर्म स्थापन हुआ 2500 साल पहले। यूरोपीय देशों में क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ क्राइस्ट के द्वारा 2000 साल पहले। चीन जापान आदि पूर्वी देशों में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। ऐसे ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक 1500 वर्षों के बाद एक एक धर्म पिताएं आते रहते हैं और सृष्टि की मरम्मत करते रहते हैं। अपने अपने प्रकार से धर्म की धारणाएं सिखाते रहते हैं, लेकिन नया मकान कोई नहीं बनाता। ये नया मकान बनाना और पुरानी सृष्टि को खलास कर देना, ये एक परम पिता परमात्मा शिव का ही काम है। इसलिए सभी धर्म स्थापक आज भी उस परम पिता परमात्मा को याद करते, तो उनको सन्मुख आना पड़े। जैसे धर्म पिताएं आते हैं अपनी धर्म की स्थापना करने, तो अपने फॉलोअर्स के सामने आते हैं ना, तो परमात्मा बाप भी जो निराकार ज्योति है, जिस निराकार ज्योति का बड़ा लिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने की सुविधा के लिए उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं, शिवलिंग, इतना बड़ा है नहीं, हमारी आत्मा की तरह वो भी ज्योति बिंदु है, वो भी सितारा है। जैसे हम आत्मा इस धरती के चैतन्य सितारे हैं, वैसे वो परमात्मा भी सितारा है। तो वो सितारा बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो दाता बनकर के आता है। हम बच्चों से लेता कुछ भी नहीं है, बाप कहते हैं मैं ही तुमको वर्षा देने वाला हूं, और बाबा दो को कहा जाता है, एक होता है शरीर का बाबा और दूसरा होता है आत्माओं का बाबा, और कोई बाबा हो नहीं सकता। तुमको इस बाबा से अर्थात प्रजापिता से वर्षा मिल नहीं सकता, जो शरीरों का बाप है, जो भी मनुष्य शक्ति की 500 करोड़ है मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को जन्म देने वाला एक बीज है प्रजापिता, उससे तुमको वर्षा नहीं मिल सकता, क्राइस्ट से भी वर्षा नहीं मिल सकता, बुद्ध से भी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तभी मिलता है जब वो सुप्रीम सोल प्रजापिता में प्रवेश करते हैं। तो साबित हुआ एक शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, उस शिव की बिंदी का नाम ही शिव है, वो ज्योति बिंदु जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है, नहीं तो वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, सब प्रकार के संबंध उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में आया हुआ होगा तभी तो जोड़ेंगे, कोई सिर्फ कहने की बातें थोड़े ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उससे वर्षा लेते, इससे सुप्रीम सोल शिव बाप से, वो दाता है, सर्व का सदगति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना चाहिए, उसके साथ आत्मा का परिचय देना ही पड़े। बाप है तो बाप के बच्चे भी होंगे, वो बाप है, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का, और हम बिंदु बिंदु आत्मा उसके बच्चे हैं। तो कोई को भी ज्ञान सुनाना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या बताना है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो, ये शरीर तो आज है और कल खलास हो जाएगा, तुम ज्योति बिंदु आत्मा फिर भी बनी रहेगी। तो तुम ज्योति बिंदु जो आत्मा हो, अपने स्वरूप को जानो और अपने बाप को पहचानो। जब अपने बाप की पहचान हो जाएगी कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी, सोमनाथ मंदिर में चारों तरफ की दीवार में चुंबक जड़ा हुआ था और बीच में निराधार शिवलिंग लटक रहा था। उस लिंग में हीरा जड़ा हुआ था, लाल पत्थर का, लोहे से मिक्स हुए पत्थर का लिंग था और बीच में हीरा था। तो वो लिंग किसकी यादगार हुई और वो हीरा किसकी यादगार हुई? हीरा है शिव ज्योति बिंदु की यादगार और जो लिंग है लाल पत्थर था वो शरीरधारी की यादगार है जो ज्ञान का सागर बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बाप कहते हैं मुझे हीरे को समझो, मैं जब हीरा आकर के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता हूं तभी संसार का कल्याण होता है। इसलिए पहले पहले कोई को बाप का परिचय देना पड़े। यूं तो कोई बड़े बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, परंतु वास्तव में बाबा कोई नहीं है। बाप एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक होता है। कहेंगे ये ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है क्योंकि ये भी एडॉप्ट करते हैं। भल तुम ब्रह्मा को बाबा कहते हो परंतु वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, उनसे मिलता है। उनसे माना जो संसार में जो रूप परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला, उनसे ही वर्षा मिलता है। और वो कौन सा वर्षा है? गति सदगति का वर्षा है जो इस समय ही तुम बच्चों को देते हैं। माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में तुमको वर्षा मिलता है। और जब वर्षा मिलता है तो उसकी निशानी है, उसकी पहचान है, सब दुखों के बंधन से छूट जाते, दुर्गति से छूट जाते हैं। अर्थात जीवन जो बंधन में महसूस करते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। इस समय भारतवासी और सारी दुनिया सब रावण के बंधन में, रावण ने सबको बांध रखा है जैसे सात जेल में पड़े हुए। आत्माएं जो पहले पहले आती है वो पहले जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में चली जाती है। कहां से आती है? कहीं से तो आती होगी, नहीं तो इस दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ती जाती है? मनुष्यों की ही जनसंख्या नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जरूर ये आत्माएं कहीं इस लोक से बाहर कोई दूसरा लोक है जहां से आती है। उस लोक को अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, सातवां आसमान। पहले कहते थे खुद अर्श में रहता है, अर्श में नहीं रहता। अभी तो मुसलमान भी कहने लगे हैं खुदा जर्रे जर्रे में। जब उसको हर जगह ढूंढा कहीं मिला नहीं तो कहने लगे वो सब में, हर जगह व्यापक है। तो बाप कहते हैं ये सब आत्मा परम धाम से आती है। सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे एक ऐसा धाम है जिसका गीता में वर्णन है। ये किस श्लोक आया है, ना वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश पहुंचता है, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुख की दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। उस परम धाम की तुम बिंदु बिंदु आत्माएं भी रहने वाली हो और मैं सुप्रीम सोल बाप भी वहां का रहने वाला हूं। तुम इस सृष्टि पर आते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आते हो, सत्युग में थोड़ी आत्माएं उतरती है, त्रेता में और ज्यादा उतरती है, द्वापर में फिर और ज्यादा उतरती है और कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे उतर आती है। जब सबके उतरने का टाइम होता है तब वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और आकर के सब आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय देता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, स्टार हो, तुम धरती के सितारे हो। वो सितारे तो आसमान में जो चमकते हैं वो जड़ है और तुम चैतन्य सितारे हो। चैतन्य कहा जाता है चलते फिरते बोलते को, तो तुम चलते फिरते बोलते सितारे हो। ये परिचय दे करके आत्माओं को स्वरूप में स्थिर कराता है कि तुम अब ये देह भान छोड़ दो। देह को याद करना माना मिट्टी को याद करना, मिट्टी को और पत्थर को याद करते करते सारी बुद्धि पत्थर बन गई। यहां तक पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं कि जिस डाली पर बैठते हैं वो डाली ही काट रहे हैं। दुनिया में एटम बम बनाए रखे हैं। इस दुनिया में रहना भी है फिर एटम बम बना करके उस दुनिया को खलास करना चाहते हैं। ऐसी पत्थर बुद्धि बन गई। ऐसे पत्थर बुद्धियों को परमात्मा बाप ज्ञान दे करके फिर पारस बुद्धि बनाए रहे। तो मनुष्य को देवता बनाना ये परमात्मा बाप का काम है, लेकिन जो इस सृष्टि पर आत्माएं पहले पहले सतयुग में आती है वो श्रेष्ठ आत्माएं होती है। सतयुग त्रेता में सिर्फ देव आत्माएं ही सृष्टि पर आती है। उस समय भारत ही सिर्फ होता है धर्मखंड, दूसरे धर्मखंड नहीं होते। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश, दूसरे दूसरे जो धर्मखंडों के देश हैं, वो 2500 साल पहले इस सृष्टि पर नहीं थे। सब समुद्र में डूबे हुए थे। अभी भी ऐसा ही होगा। ये एटम बम जब फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस टूट जाएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के जमे हुए, वो पहाड़ पिघल जाएंगे एटम बमों की गर्मी से। और जब वो पिघलेंगे तो दरार आने से वो सारे समुद्र में आ जाएंगे और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये अफ्रीका, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अरब देश जो पहले थे ही नहीं, वो सब समुद्र में समा जाएंगे और सिर्फ भारत खंड रह जाएगा जहां भगवान आदि। कोई तो कारण होगा, भारत में ही भगवान क्यों आते हैं? जरूर है, भारत देवभूमि थी, देवताओं का देश है, देने वालों का देश है, ये माता पिता का देश कहा जाता है। माता पिता बच्चों को देते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते। इस भारत देश में भगवान आया हुआ है, वो आकर के रास्ता बता रहा है। इस दुनिया के विनाश होने से पहले अपना वर्षा मुझ बाप से ले लो। जो लेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वो फायदे में रहेंगे। एक जन्म के फायदे में नहीं, अनेक जन्मों का फायदा हो जाएगा। जो अनेक जन्मों का फायदा होता हो तो एक जन्म की जो थोड़ी सी प्राप्ति हो रही है उसको त्याग करने में क्या बड़ी बात है? इस जीवन का इतना लंबा समय तो बीत गया, अब थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो 20-20 मेगावाट की बम्बियां छूटी थी। दुनिया में हाहाकार हो गया था। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के एटम बम तैयार हो चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कब विश्व युद्ध शुरू हो जाए। और अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो सारे ही देश से युद्ध में कूद पड़ेंगे। अगर तो खुदान खास्ता तृतीय विश्व युद्ध में कुछ सृष्टि रह भी गई तो चौथा विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगी। जिसमें ये सारी एटमिक दुनिया खलास हो जाएगी। अभी टाइम ज्यादा नहीं है, अभी ईश्वर का कार्य भी पूरा हो चुका। जो ज्ञान देना था वो सारा ज्ञान दे दिया। अब समझाने के लिए परमात्मा के पास कुछ रहा नहीं, तो अभी समय है। शांति के टाइम में अच्छी पढ़ाई होती है। फिर जब जिंदगी में धंधा दोरी लग जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, तो पढ़ाई नहीं होती। ये भी परमात्मा बाप पढ़ाया है, अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। अनेक जन्मों का सुख शांति का वर्षा जल्दी से ले लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।